कार्तिकेय अनुप्रेक्षा लेक्चर नंबर 141। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धे शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अजायाणं, नमो लोये सवसाहूनं, त्रिभुवनतिलकं देवं वंदित्वा त्रिभुवनेन्द्रपरिपूज्यं, वक्षे अनुप्रेक्षाः भविकजनानन्दजननी। यह आचार्य कार्तिकेय स्वामी द्वारा लिखित जो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा है, उसमें अभी हम धर्म भावना को देखते हुए यहाँ पर जो श्रावक है वह श्रावक की कैसी कैसी प्रतिमाएं वगैरह होती है, उनकी कैसी अवस्थाएं होती है, वह देखते देखते वह श्रावक को 12 प्रतिमा जो बताई गई है,
11 प्रतिमा,
उसके पहले 12वां जो व्रत, मैंने पहला व्रत,
यानी शुद्ध सम्यक दर्शन,
शुद्ध सम्यक दर्शन आवश्यक है, ऐसा वहां बताया। देखो वहां 12 व्रत बताया है।
ये सबको मिलकर 12 धर्म बताया है। हाँ,
एक मिनट,
27 में,
27 पेज पे। अगर गृहस्थ धर्म ना 12 वेदों ना नाम भी गाथा में कहे छे।
देखो 28 पृष्ठ पर ए प्रमाणे 11 प्रतिमा, ये 5वीं लाइन में, અને એક શુદ્ધ સમ્ય દર્શન મૂળ મળી શ્રાવક ધર્મ ના 12 ભેદ છે, અને પ્રતિમા તો 11 હી હોગી,
11 પ્રતિમા હોગી, લેકિન વો 12વા ભી
ઉસકો ધર્મ કહા હૈ, ધર્મ કહા ઉસકો। ઓર જો 12 વ્રત હોતે હૈ વો દૂસરી વ્રત પ્રતિમા મે હોતે હૈ।
हाँ, ऐसा 12 भेद धर्म के बताए उन्होंने,
श्रावक के 12 धर्म बताए।
तो उसके वक्त वो सम्यक दर्शन यह होता ही है, यह बात बताने के लिए सम्यक दर्शन क्या है यह बताते बताते अभी उसमें उन्होंने वो सम्यक्त्व के 3 प्रकार बताए। उसमें अभी फिलहाल हम तो 3 प्रकार जानते ना सम्यक्त्व के, एक औपशमिक सम्यक्त्व, एक शायपशमिक सम्यक्त्व और एक क्षायिक सम्यक्त्व। तो इनमें अभी फिलहाल तो उपशम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व की बात श्लोक नंबर 308 में चल रही है, वह देखते हुए हम 33 नंबर के पृष्ठ पर आए हैं।
देखो कल हमने गाथा पढ़ी थी, उसका अर्थ भी देखा था। अब यहाँ जो उसका अर्थ यहाँ पर लिखा है उसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे भी। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, या कहो या सम्यक प्रकृति कहो, एक ही बात है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये 7 मोह कर्म प्रकृतियों उपशम थता उपशम सम्यक तो उत्पन्न थाय छे। आवाज आ रही क्या? हेलो। हाँ देखो, अभी हमें जो उपशम सम्यक्त्व होता है, उपशम में किसी कर्मों की उपशम अवस्था पाई जाती है, तो कौन से कर्मों की उपशम अवस्था पाई जाती है? जब उपशम सम्यक्त्व प्राप्त होता है तो कौन कौन सी कर्मों की उपशम अवस्था है? एक तो दर्शन मोहनी है और बाकी चारित्र मोहनी में अनंतानुबंधी है, तो अनंतानुबंधी तो 4 तो हो गए ही। दर्शन मोहिनी के जो 3 है, वो तो अनादि से तीन नहीं पाए जाते हैं। तो अनादि के जीव को दर्शन मोनी में एक मिथ्या तो प्रकृति ही है, और जब एक बार उपशम सम्यक तो होता है उस काल में उसके तीन भाग बन जाते हैं, उसका अनुभाग घटकर और दो प्रकृति तैयार होती है, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, जो जो फिर दोबारा गिर के मिथ्यात्व में चला जाता है। तो उसके वो तीन जो टुकड़े हैं, तीन जो प्रकृतियां हैं, वो असंख्यात वर्षों तक चलती रहती है। दोबारा जब उसको सम्यक उपशम सम्यक तो होता है, वो कब होता है क्या होता है वो बाद में देखेंगे, तो दोबारा उपशम सम्यक तो होता है तभी तीनों का ही उपशम करेगा वो तीन और अनंतानुबंधी के चार। इस तरह से इन सात प्रकृतियों का उपशम पाया जाता है। कोई बात नहीं, वो सुबह माइक बदला था ना। तो यहाँ कौन से कर्मों का उपशम होता है वो बात बताई। तथा ए साते मोह कर्मनी प्रकृतियों नो क्षय थता, क्षायिक सम्यक तो उत्पन्न थाय छे। क्षय का अर्थ होता है सत्ता में से संपूर्ण उसका नाश हो जाना। तो पहले में पहले क्षय कैसे होता है, तो अनंतानुबंधी जो है उसका संक्रमण के द्वारा अन्य प्रकृति रूप हो जाती है। कौन सी? उसी की जाति की चाहिए चारित्र मोनी की। अन्य जो बारह कषाय है और नौ नौ कषाय है उसमें वो पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाता है, संक्रमित होता है, उसको कहते हैं विसंयोजना हो गई, तो उसका नाश हो गया। उसके बाद जो मिथ्यात्व है, जितना सत्ता में पड़े हैं, वो सारे के सारे परमाणु सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप हो जाते हैं और मिथ्यात्व का नाश हो जाता है। उसके बाद सम्यक मिथ्यात्व के सभी सत्ता में पड़े परमाणु वो सम्यक प्रकृति रूप हो जाते हैं और उसका नाश हो जाता है। अब रही एक सम्यक प्रकृति, उसका भी वहाँ जिसको स्थिति कांड कहने, बहुत जल्दी से जल्दी वो खिर जाते हैं और वो उसका भी नाश हो जाता है, तब उसको कहेंगे क्षायिक सम्य दृष्टि। एक बार इनका सत्ता में से नाश होने के बाद दोबारा फिर इनका बंधन नहीं हो सकता, पूर्ण नाश हो गया है। जीव की भी श्रद्धा क्षायिक इतनी दृढ़ हो गई है कि फिर वो सत्ता यानी वो श्रद्धा कोई चूक नहीं सकती, पढ़ नहीं सकती। और उसमें भी निमित्त रूप से जो कर्मों का उदय पाया जाता है, उदय के लिए भी सत्ता कहाँ है? तो जिसका क्षय हो चुका है उन कर्मों का उदय भी कभी नहीं होगा और जीव के मिथ्या तो परिणाम भी कभी नहीं होगा। तो उसका मिनिमम गुणस्थान कौन सा रहेगा क्षायिक सम्यक दृष्टि का? नीचे से नीचे, हाँ, चौथा। ना वो तीसरे में आ सकता है, ना दूसरे में, ना पहले में। बात ख्याल में आई? तो ये क्षायिक सम्यक दर्शन है वो परमानेंट है। अभी किसी का उसी भव में मोक्ष हो जाएगा, किसी के दूसरे एक देव का या नारके का करके फिर मोक्ष हो जाएगा, या भोग भूमि का करके और एक भव बढ़ेगा, उससे अभी ज्यादा भव नहीं रहे क्षायिक वाले के। मिनिमम तो उसी भव में मोक्ष जाएगा ये क्षायिक हुआ तो। कोई कोई उसी भव में क्षायिक करके उसी भव में मोक्ष चला जाएगा, या एक भव देव का करके फिर मनुष्य में आए के मोक्ष जाएगा, या अभी जैसे श्रेणी ने किया नरक में गया है वहां से मनुष्य होकर मोक्ष चले जाएंगे। उससे ज्यादा होते हैं जिसने भोग भूमि में जाते हैं ना, जिसने तिर्यंचायु या मनुष्यायु बांधी है पूर्वम मिथ्या तो अवस्था में, और बाद में उन्होंने क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, तो भोग भूमि का तिर्यंचा मनुष्य, श्रेणी की बात तो बता चुके हम नरक के लिए। नरक में जाएगा तो भी एक नरक का भोग करके मनुष्य होकर मोक्ष जाएगा, देव में जाएगा तो भी एक देव का करके मनुष्य होकर मोक्ष जाएगा। जो मनुष्य या तिर्यंच होगा उसके मनुष्य तिर्यंच, फिर देव और फिर मनुष्य और फिर मोक्ष जाएगा। क्षायिक समय दृष्टि है वे, हाँ। तिर्यंच कभी समय दृष्टि मनुष्य नहीं होता, नहीं, तिर्यंच सभी समय दृष्टि देव में ही जाते हैं। ये मनुष्य में से सम्यक दृष्टि मनुष्य में आने वाला है वो तो क्षायिक ही होना चाहिए। अब आंख शायिक सम्यक्त्व, यानी ये शायिक सम्यक्त्व कौन से जीव को हो सकता है? क्या चारों ही गतियों के जीवों को क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है? ये प्रश्न है। बिगिनिंग, क्षायिक सम्यक्त्व की बिगिनिंग, उसकी प्राप्ति कौन करता है? क्या चारों गतियों का जीव करता है? तो क्षायिक सम्यक्त्व किसके होता है अगर पूछेंगे तो कहेंगे चारों गतियों के जीवों में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्षायिक के साथ जो अन्यत्र जन्म लिया है, अभी हमने तिर्यंचों को देखा, भोग भूमि में भी क्षायिक सम्यक दृष्टि तिर्यंच असंख्यात है, मनुष्य भी वहां पर असंख्यात है, भोग भूमि वाले देवों में भी असंख्यात जीव क्षायिक सम्यक दृष्टि है, और नारकी भी पहले नरक में असंख्यात क्षायिक सम्यक दृष्टि है। परंतु बात यह है कि उसकी बिगिनिंग, उसके प्राप्ति कौन करता है, उसके लिए यहाँ कंडीशंस बताए हैं। तो आंख क्षायिक सम्यक्त्व केवल ज्ञानी वा श्रुत केवली ना निकट पनामा, यानी केवली या श्रुत केवली, ये कौन प्राप्त करता है? तो कहते हैं कर्म भूमि का मनुष्य प्राप्त करेगा। भोग भूमि के मनुष्य को क्षायिक सम्यक्त की बिगिनिंग नहीं होगी, ना ही देवों को होगी। भले देव आते हैं समोचरण में, तीर्थंकर के सान्निध्य में है, केवली श्रुत केवली का निकटपना उनके भी प्राप्त हो सकता है, परंतु उनको क्षायिक सम्यक्त की बिगिनिंग प्राप्ति, जिसको कहेंगे ना
वो स्थापना
प्रतिष्ठापना, वो नहीं हो सकती। तो किसके होती है? एकमात्र कर्म भूमि के मनुष्यों को। अब क्षायिक की प्राप्ति किसके होती है? जो ऑलरेडी जो क्षोभसम सम्यक दृष्टि है उसको क्षायिक होगा। उपशम में से डायरेक्ट क्षायिक नहीं हो सकता, या कोई मिथ्यात्व में से डायरेक्ट क्षायिक ही उसने प्राप्त किया, ऐसा भी कभी नहीं हो सकता। तो ऑलरेडी जो सम्यक दृष्टि है, अभी यहाँ पर जो कर्म भूमि का मनुष्य लिया है, तो उसमें चौथे काल का लेना है, क्योंकि एक केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में ऐसा लिए, तो उनके जो पाद मूल में जाने, पाद मूल का अर्थ होता है उनके समीप, उनके निकट, उनके उपदेश के द्वारा निमित्तपने वहां वो पाए जाते हैं। केवली या शुद्ध केवली निमित्तपने से पाए जाते हैं, वो कुछ कराते हैं, वो इनको देते, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो देने वाले होते तो समोचरण में जितने जीव होते, देव भी आते हैं, तिर्यंच भी आते, उनको भी होना चाहिए था, परंतु उनकी ऐसी पात्रता योग्यता नहीं है। तो ये क्षायिक सम्यक्त्व केवल ज्ञानी वा श्रुत केवली ना निकट पनामा, निकट पना ने सान्निध्य मा, उनके नजदीक में, उनके उपदेश के द्वारा कर्म भूमि ना मनुष्य ने ज उपजे छे, ज लगाया, और किसी को नहीं। उपजे की बात चल रही है, किसको होता है पूछेंगे तो चारों गति में, किसमें पाया जाता है, परंतु किसको उत्पन्न होता है? तो कर्म भूमि के मनुष्यों को। और कौन से गुणस्थान वालों को क्षायिक सम्यक्त की प्राप्ति होती है? बोलो, चौथे वाले नवीन भाई क्या कहते? चौथे से सातवें तक किसी भी, कोई चौथा होगा, कोई पांचवा होगा, कोई छठे होगा, कोई सातवां भी होगा, तो उस गुणस्थान में उसको वेदक सम्यक्त में से क्षायिक सम्यक्त की प्राप्ति होती है। अब भावार्थ, ये बात ख्याल में आई जितना अभी हमने पढ़ा है। औपशमिक सम्यक्त्व में कर्मों का उपशम पाया जाता है, ये कौन से कर्मों का, वो हमने बात देखी, दर्शन मोनी और अनंतानुबंधी, और क्षायिक में उनका क्षय पाया जाता है। भावार्थ, अहीं एम जानू कि क्षायिक सम्यक्त्व न, वो बराबर करना, सम्य करना, जय बहन ने कुछ पूछा कि क्षायिक सम्यक्त्वनो प्रारंभ, तो प्रारंभ लिखा है ना, बिगिनिंग, केवली शुत केवलीनी निकटतामा कर्म भूमिना मनुष्यने ज थाय छे, तथा तेनी निष्ठापना, इष्ट नहीं चाहिए, इष्ठ चाहिए, निष्ठापना, निष्ठापना का अर्थ होता है पूर्णता। ये पूर्णता का अर्थ क्या है? पूर्णता ने जैसे हमने देखा था क्षायिक सम्यक्त्व का पूरा प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है, उसके पश्चात मिथ्यात्व का क्षय होता है, अभी जो बात की ना हमने किस तरह से होता है, उसके पश्चात सम्यक मिथ्यात्व का क्षय होता है, वो सारी की सारी संक्रमित होती है सम्यक प्रकृति रूप से। अब एक सम्यक प्रकृति सत्ता में है, अब उसमें भी बहुत सारी स्थिति होती है, तो वो घटाते घटाते एक अंतर्मूर्त जितनी रह जाती है, उसको कहते हैं अभी वो कृतकृत्य वेदक हुआ। क्या नाम है उसका? कृतकृत्य का अर्थ क्या है? जैसे हम लड़की की शादी होती तो क्या फील करते हैं? हम कृतकृत्य हो गए, करने जैसा कार्य कर लिया। हाँ, ये अभी नहीं पता चलेगा, अभी आपकी लड़की की शादी होने को टाइम आएगा। ये सुशीला बहन को पता है ना?
तो
यहाँ कहते हैं हाँ कि करने जैसा कार्य उसने कर लिया है, ये कृतकृत्य वेदक। तो अभी कृतकृत्य वेदक अवस्था में वो जीव का मरण हो सकता है। जब से मिथ्यात्व का क्षय प्रारंभ कर दिया था, उस काल से लेकर जो कोई एक अंतर्मूर्त मिथ्यात्व के क्षय के लिए लगता है, फिर एक अंतर्मूर्त वहाँ विश्राम होता है, फिर सम्यक मिथ्यात्व का क्षय, फिर विश्राम, फिर सम्यक प्रकृति जो है उसकी जो स्थिति है वो घटाते चला जाता है। अब वो वेदक सम्यक तो हुआ, कौन सा? कृतकृत्य वेदक। इस टाइम तक उस जीव, किसी जीव का मरण नहीं हो सकता, परंतु कृतकृत्य वेदक अवस्था में मर सकता है। तो मरकर कहाँ जाएगा ये जीव? बोलो प्रभावी। कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि जीव अभी वो अंतर्मूर्त में क्षायिक होने जा रहा है, थोड़ा ही काल बाकी है, कहाँ जाएगा? हाँ, कहाँ कहाँ जाएगा पूछा हमने, भी नहीं लगाना हमको कहाँ। बोलो मिलिंद भाई। देखो देखो, अभी हमने देखा था चारे गति में। अरे वो तो अभी क्षायिक होने वाला है, रहने का सवाल। तो क्या हुआ? अभी वो नियम से निष्ठापन करने वाला है।
देखो अभी वो क्षयक्षम सम्यक दृष्टि है, वो मिथ्यात्व नहीं हुआ है। और क्षयक्षम का मतलब क्या है? सम्यक प्रकृति का उदय बाकी सत्ता में थे, अब वो सत्ता में वाले भी उन्होंने हटाया। कौन किसको? मिथ्यात्व को, और तुम्हारा दूसरा कौन सा? सम्यक मिथ्यात्व। अभी सम्यक प्रकृति में भी उसको कम करते 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 आया है, अभी उसमें उसका मरण हो गया, तो वो कहाँ कहाँ जाएगा ये प्रश्न है। तो वो तो मिथ्यात्व में जाने का सवाल ही नहीं, ये हाँ, पक्की बात है।
सरला बिन कुछ बताना चाहते?
ठहर ठहर,
देवी अनारकी में।
हाँ, सुशीला बिन क्या कहती है? देव और नारकी,
बहुत अच्छा।
हाँ, बापा क्या बोलते हैं?
देखो देखो, सुभाषचंद जी कहते हैं कि जिसने पहले जो आयु बांधी है मिथ्यात्व अवस्था में, उसने चारों आयु में से कोई भी आयु का बंध हो सकता है मिथ्या दृष्टि जीव को। तो पहले मिथ्यात्व अवस्था में उसने चारों आयु में से कोई बंध किया है, बाद में उसको सम्यक दर्शन हुआ है, उसके बाद क्षायिक सम्यक दर्शन हुआ है। तो जिसने तिर्यंच आयु को बांधी, पहले तिर्यंच आयु बांधी है, वो अभी कृतकृत्य वेदक अवस्था में भोग भूमि का तिर्यंच होगा। जिसने मनुष्य आयु बांधी है वो भोग भूमि का मनुष्य होगा। देवायु बांधने वाला देव में चला जाएगा, और जिसने ऑलरेडी नरकायु बांधी है, हमारे जो श्रेणिक राजा है, ये करनान युग में बहुत बार उनको हेल्प लेनी पड़ती है हमको, तो वो भी वहाँ, वो तो क्षायिक होके गए थे, परंतु ऐसे जो कोई जीव है वो कृतकृत्य वेदक होकर वहाँ जाते हैं। और वहाँ जाते ही अब ये ऐसा है ना कि कृतकृत्य वेदक में कुछ निषेक बाकी है, किसी के 100 निषेक बाकी है तो 100 समयों में सम्यक तो होगा, किसी का एक ही निषेक बाकी है एक समय में सम्यक तो होगा, किसी का काल बाकी है। सम्यक तो है ना
मरने के पहले, मरने के बाद,
वहाँ जाकर उधर जाकर अभी कितने निषेक खिरना बाकी है? सम्यक प्रकृति के 4 निषेक बाकी है, तो चौथे समय में वो क्षायिक सम्यक दृष्टि हो जाए, वो खिरते ही क्षायिक सम्यक, भोग भूमि का ही मनुष्य होगा, कर्म भूमि का नहीं हो सकता। देखो देखो देखो, ये कृतकृत्य वेदक का अर्थ है अभी क्षायिक होने में कुछ समय बाकी है, यानी उसको निष्ठापना यानी पूर्णता बाकी है, बाकी पूरा कार्य कर लिया है उसने, अभी ये जो एक एक निषेक खिर कर जो उसके निकल जाएगा वो कार्य कहीं भी जो अभी जिस आयु बांधी है वहां जाकर भी ये कार्य हो सकता है, वहां अगर मरण होगा तो की बात है, पूरा क्षय यहीं भी कर ले बाद में वहां जन्म ले सकता है। जरूरी नहीं कि वो कृतकृत्य वेदक में ही मरे, क्योंकि आयु जिसकी पूरी हुई है तो वहां पर उसका मरण हो जाए। तो यहाँ क्या लिखते देखो, क्षायिक सम्यक्तनो प्रारंभतो केवली शुत केवली निकटतामा कर्मभूमिना मनुष्य नेज थाय छे तथा तेनी निष्ठापना इष्ठ करना। निष्ठापना यानी पूर्णता, पूर्णता का अर्थ क्या है, अभी कृतकृत्य वेदक है, कुछ निषेक बाकी है, एक एक करके उदय में आते आते कुछ समयों में उसको क्षायिक होगा भी, इसको पूर्णता कहते हैं। ये पूर्णता अन्य गतिमा एटले चारे गतिमा थी कोई एक मां पण थाय छे, कोई एक मां पण थाय छे, इसका अर्थ क्या है, जो कोई आयु बांधी है वहां जाकर उसकी निष्ठापना होती है, पूर्णता। बिगिनिंग मनुष्य में, कर्म भूमि के मनुष्य में, केवली श्रुत केवली के निकट में, और पूर्णता वहां जाकर हो सकती है। पूर्णता यहां भी हो सकती है, आयु अभी बाकी है तो पूर्णता यहीं पर होगी, अगर उतने ही काल में मरण हो तो जिस गति में जाएगा वहां उसकी पूर्णता निश्चित होने वाली ही है, क्योंकि अभी वो तो खिरने लगे हैं ना निषेक एक एक करके, तो अभी उसको कोई रुकावट है ही नहीं। हाँ वो बिगिनिंग के लिए है, अभी उसके पूर्णता के लिए केवली का पादमूल की जरूरत नहीं है, इसीलिए कहा बिगिनिंग जो है उसकी जो प्रारंभ जो है वो कर्मभूमि में होगा, और उसका निष्ठापन यानी पूर्णता जहां जाएगा वहां हो जाएगी। हाल में आई बात।
हाँ। अभी देखो हम पढ़ देंगे या हम फिर से अर्थ देखेंगे, या अर्थ में हमने क्या देखा, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग, ये सात मोह कर्म की प्रकृतियों, यानी मोहनी कर्म में सात गिनाए, लेकिन एक्चुअली हम उसका दो प्रकार से डिवीजन करते हैं, तो दोनों अलग अलग कौन कौन से मोहनी कर्म के भेद होंगे। हाँ बोलो, आपको अभी बताया था ना। हाँ देखो मैंने क्या कहा, देखो
इनका प्रश्न ऐसा है,
मिथ्यात्व सम, हाँ बोलो बोलो,
ये सात प्रकृतियां अभी हमने देखा तो उसमें हमने दो डिविजन्स करने हैं, बोलो। अभी
हमने मोहनी प्रकृति की दो प्रकार देखे थे, याद है,
मोहनीय के दो प्रकार
कौन से हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो इन दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी में इन सातों को बांटना है, तो कौन सा किस में जाएगा। हाँ आप बताएंगे तेज, अभी बताया था ना 6 बजे के पहले, कौन बताएगा, आप बताएंगे बेन। हाँ क्या बताया उन्होंने कि मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, यह दर्शन मोहनी के पेटा भेद है, यानी सब डिविजन्स है। और आगे चारित्र मोहनी के अंदर अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये चार, यानी यहाँ कैसा है, देखो एक ग्रैंडफादर है कौन, मोहनी, उसके दो बेटे, एक दर्शन मोहनी एक चारित्र मोहनी, वो बेटों के बेटे हैं, एक को तीन है एक को चार है, कौन से तीन है, हाँ ये इनके पेटा भेद है। अभी ये बेटा बेटा छोड़ दो, पेटा भेद इतना तो समझेंगे कि नहीं, और यहाँ है तो चारित्र मोहनी के अधिक कितने होंगे, अधिक से अधिक चारित्र मोहनी के भेद टोटल 16। अच्छा अच्छा आप क्या कहती हैं सुशीला बेन, 25 पक्का, नक्की बोलो भाई, बापा ख्याल में अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ और संज्वलन कितने हो गए? चार चौक 16 और अधिक 9 कषाय। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद और नपुसक वेद ये 9 कषाय। ऐसी ये टोटल चारित्र मोनी के 25 भेद है। ये बात ख्याल में आई? हाँ सरला बेन, आपको बात ख्याल में गए? आगे बढ़ेंगे। हाँ क्या कहा? ए 7 मोह कर्मणि प्रकृतियों नो उपशम थता, उपशम सम्यक तो उत्पन्न था छे, या 7 को लिया ना तो ये उपशम जब होता है तब वो औपशमिक सम्यक तो प्राप्त होता है, और ये 7 का क्षय हो जाता है तो क्षायिक सम्यक तो होता है। इतनी बात आसान है कि नहीं? तो क्या कहते हैं? अनेते 7 मोह कर्मणि प्रकृतियों नो क्षय थता क्षायिक सम्यक तो उत्पन्न थाय छे। क्षायिक सम्यक्त्व केवल ज्ञानी वा श्रुत केवली ना निकटपनामा कर्मभूमि ना मनुष्य ने ज उत्पन्न थाय छे। अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो है ना कर्मभूमि, यानी जो अभी जिसको हम आर्य खंड कहेंगे, आर्य भूमि कहेंगे, म्लेंज खंडों के मनुष्यों को क्यों नहीं होगा? ये मेरा प्रश्न है। हाँ नलिन भाई आप बताएंगे। हाँ बहुत अच्छा, आपका क्या कहना है समझ में आया? म्लेंज खंडों में वहां जो मनुष्य है, या भोग भूमि में भी मनुष्य देखा ना हमने, तो उनमें भी कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि मनुष्य होते हुए भी नहीं हो सकता। क्यों? वहां केवली का, और या तो श्रुत केवली का, श्रुत केवली यानी जो 12 अंग के ज्ञानी है उनको श्रुत केवली का है। जो सम्यक दृष्टि होते हैं और 11 अंग और 9 पूर्व का 14 पूर्व कहो या 12 अंग कहो, इनके वे ज्ञाता होते हैं, इनको श्रुत केवली कहते हैं। और केवल ज्ञानी यानी जो सर्वज्ञता से युक्त है पर्याय में, तो ऐसे जीवों के इर्द गिर्द वह जीव रहता है तो उसके क्षायिक सम्यक्त्व की शुरुआत होती है। हाँ
बोलना चाहते हैं? नहीं, वो म्लेच्छ यहाँ आएंगे तो?
हाँ म्लेच्छ आएंगे।
हाँ
मैंने म्लेच्छ खंड में जाके बात करी थी। वह सात्विक गुण स्थान तक जाएगा,
मुनि तक हो सकते हैं।
हाँ पर उसको क्षायिक समय तो होगा ऐसा कहीं हमने पढ़ा नहीं है। अब आगे
ऐसे है ना, अभी चक्रवर्ती जाते हैं और वहाँ लेंचों के साथ वहाँ कन्याओं से शादी भी करते हैं।
वो तो ऐसा बताया कि वहाँ उनके बच्चे जो होते हैं वो मुनि तक होते हैं।
मुनि तक होते हैं
यानी वहाँ का डायरेक्ट साला वाला आएगा उनका तो नहीं होगा।
अभी वो म्लेंच पना नहीं रहा ना उनका।
ये क्या कहा इन्होंने?
अभी यहाँ आते हैं तो उनका जीवन पलट जाता है कि नहीं? वहाँ के मनुष्यों की जो है अरविंद, मैं ऐसा कहीं सुनने में, क्योंकि मुनि तक होते इतना हमने देखा, उनके उनके जो पुत्र होते वगैरह। हाँ
देखो अभी फिर से सुनना सुनना भाई, हमें जरा बोलने को चांस देना साहब, क्या कहने में आ रहा है। देखो डायलम ऐसा है कि जो म्लेंज खंड का कोई व्यक्ति है वो यहाँ पर आए, कहाँ आर्य खंड में, तो उनके सम्यक्त्व आदि कुछ होगा क्या नहीं होगा, तो उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। लेकिन ये जानकारी निश्चित है कि चक्रवर्ती वहाँ की 32,000 कन्याओं के साथ ब्याह करके आता है, तो उनसे उनके बच्चे होंगे, वो बच्चे मुनि के यानी सातवें गुण स्थान तक जाते हैं, ये तो शास्त्र में हमने पढ़ा है। लेकिन उनको क्षायिक सम्यक तो होता है कि नहीं वो पढ़ा नहीं है, अपने भेजे से कोई अपन डिसीजन नहीं लेना।
श्रेणी की बात नहीं आती, सातवें गुण स्थान तक आता है।
हाँ नहीं नहीं श्रेणी की बात नहीं, तो श्रेणी की वो चढ़े नहीं तो मतलब क्षायिक होगा ही नहीं, ऐसा हम लेकिन इन्फरेंस नहीं देखना है अपने को। हाँ
वो तो चक्रवर्ती के साथ जो वहाँ ब्याह के आएगी उसकी बात है।
अरे यहाँ के आ रहे वो मिलन जैसे होने लगे, वो काय को आने की गरज है? हाँ कमाल कर रहे हैं। हाँ आपका ऐसा पूछना है, वो चौथे काल में यहाँ आए हैं, कौन आए हैं? कन्याएं आई हैं।
अरे वही आएगा कहते तो आपने को चौथे काल में जो आए ना उन्होंने यहीं के लोगों को मलेच्छ बना दिया। हाँ चक्रवर्ती ही वहाँ जा सकते हैं।
अभी अपनी क्या बात हो रही थी, ये क्षायिक सम्यक्त्व जो है वह केवल ज्ञानी या श्रुत केवली के उपस्थिति में किसी जीव को उसकी शुरुआत हो सकती है क्षायिक सम्यक्त्व की। देखो भाई ये क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करने का पुरुषार्थ वह जीव स्वयं करता है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द में जैसे लोग होंगे वैसे हमको भी वैसा ही प्रकार का कार्य करने का सूझता है। वहां पर वो केवली है उनको देखते हुए इसके अंतरंग में ऐसी दृढ़ता आ जाती है कि हम भी ऐसा क्यों न बने, प्रयत्न करेगा। जैसा आप क्या करते हैं? अरे मैंने कुछ नहीं करता हूँ, खाली मैं वो शेयर लेता हूँ बेचता हूँ, एक साल में 10-5 लाख तो मिलते ही है। अच्छा तो मैं भी चालू करूँ, ऐसा अपना पुरुषार्थ होता है ना? खोटा। लेकिन पुरुषार्थ तो होगा कि नहीं? अरे उसने इतने में इतने कमाए मालूम है? अच्छा जाता है 5-25 लाख के डूब के आता है। अरे जो ख्याल में आया, तो कहने का मतलब ये है कि वहां केवली भगवान को देखे, उनके पास जाए, उनको सुने, श्रुति केवली से उपदेश ले, तो अंतरंग में ऐसी स्थिरता हो जाती है यह सहज रूप से उनके भी क्षायिक सम्यक्त्व की शुरुआत होती है। अब हर क्षायिक सम्यक्त्व की शुरुआत किया हुआ जीव क्षायिक सम्यक्त्व पूरे होने के पहले ही मरे ऐसी कोई गरज नहीं है, इसी भाव में पूरा क्षायिक सम्यक्त्व होता है। और कई ऐसे कुछ होंगे कि जो अभी वो ये पहले सारे मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व को हटाकर अभी सम्यक प्रकृति बाकी है उसका क्षय करते करते अभी कुछ समय उनके बाकी है तब उनका मरण होता है, और उस वक्त सम्यक तो प्राप्त करने के पहले अगर कोई उन्होंने आयु बंद किया है तो उस वहां जाएगा, मनुष्य आयु या 3 इंच आयु बांधा होगा तो वह नियम से भोग भूमि का मनुष्य या भोग भूमि का 3 इंच होगा, और वहां जाते ही कुछ ही जितने अभी उसके निषेक बाकी है उतने खत्म करके वहां क्षायिक सम्यक भी कहलाएगा। अब वहां वो यहाँ तो जो जीव क्षायिक सम्यक्त्व स्टार्ट करता है वह नियम से क्षोभम सम्यक्त्व ही होता है, औपशमिक सम्यक्त्व डायरेक्ट क्षायिक सम्यक्त्व तो प्राप्त नहीं करता है, तो वो मिथ्यात्व में जाने का सवाल ही नहीं है। उसने इतना उग्र पुरुषार्थ चालू किया है कि सम्यक्त्व के साथ ही वहां जाएगा और क्षायिक सम्यक्त्व होगा। अब कोई जीव सम्यक्त्व होने के पूर्व में अगर नरक आयु बांधता है तो यहाँ सम्यक्त्व प्राप्त करके क्षायिक सम्यक्त्व होके नरक में जाएगा,
पहले नरक में जाएगा,
पहले नरक में ही जाएगा वो बराबर है, दूसरे तीसरे या और नीचे के कहीं नहीं जाएगा। और आयु बंद सम्यक्त्व के पहले हो जाए या बाद में हो जाए कौन से देव का, तो देवगति में देव आयु में मतलब स्वर्ग में ही जाएगा। ये बात ख्याल में आई? अभी इस पर कोई किसी के प्रश्न है तो पूछ लेना, क्योंकि हमारी गड़बड़ होती है ना छोटी छोटी बातों में। हाँ हाँ आपका प्रश्न ऐसा है कि जो क्षायिक सम्यक्त्व है वो नरक में जाएगा क्षायिक सम्यक्त्व के साथ, तो वहाँ उसकी आयु मिनिमम
84,000 वर्ष
मिनिमम 84,000 ईयर यानी 84,000 वर्ष की होगी। मैक्सिमम एक सागर की होनी चाहिए, मुझे पक्का
कुछ कम होता है, एक
सागर
पूरा
में
सागर
पल्ले
नहीं
के असंख्यात विभाग कम है ना,
कम होता
एक
है।
सागर में पल्ले के असंख्यात विभाग कम, इतनी आयु होगी। पहले
चारों में,
चारों गति में
जो आयु बांधी है वहां पर जाएंगे,
जहां आयु बांधी है जो आयु बांधी है वहां पर जाएंगे। हाँ, अभी आपका पूछना है ये नरक में क्षायिक सम्यक्ति, पहले नरक में सिर्फ असंख्यात है। तीरंज गति के जीव जो यहाँ से मनुष्य गति से तीरंज भोग भूमि में गए वह भी असंख्यात है, मनुष्य में गए हैं वह भी क्षायिक सम्यक दृष्टि असंख्यात है। अब उसके आगे देवगति में जो क्षायिक सम्यक्ति गए हैं या वहां जाकर हुए हैं वे भी असंख्यात है।
देखो इसका
आगे सुनना है,
हाँ।
नरक में असंख्यात तीर्थंकर होने वाले जीव है,
प्रकृति बांधने वाले,
यानी तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे तो अपने को कोई चांस नहीं अभी
मनुष्यों में। हाँ, चौथे गुणस्थान वाले तीन, हाँ सभी, यानी सभी जगह के। देखो क्या, मैं दूसरी एक पॉइंट बताना चाहती हूँ, क्षायिक सम्यक तो कौन प्राप्त करता है, अभी अभी हमने देखा कर्म भूमि का मनुष्य, बराबर है ना, वो कितने हो गए, संख्यात ही हो गए, वो तो असंख्यात नहीं होते, और उनकी आयु भी अधिक से अधिक कितनी होगी, करोड़ पूर्व की होगी। तो उसमें से कुछ संख्यात जीव मरकर अन्य अन्यत्र चले जाएंगे, क्योंकि क्षायिक सम्यक तो होते रहेंगे, होंगे तो भी कितने होंगे, संख्यात होंगे। अब वो जीव नरक में जन्मेंगे, फिर कुछ काल के बाद होंगे वो भी नरक में जाएंगे, कोई देव में जाएंगे, कोई तिरंच में जाएंगे, कोई मनुष्य में जाएंगे, परंतु ऐसे वहाँ कितने इकट्ठे होंगे, तो नरक की पहले नरक की आयु अधिक से अधिक कितनी है वहाँ के जीवों की, तो एक सागर वाली है। तो एक सागर जितने काल में भले वो संख्यात मनुष्यों में से मरकर आए हैं, परंतु वो कितना बड़ा काल है जिसको संचय कहते हैं, इकट्ठे हुए ना, क्योंकि ऐसा कितना लंबा काल है वो सागर का, असंख्यात असंख्यात वर्ष है उसमें, 10 कोड़ा कोड़ी तो पल्य है, और वो पल्य का माप अगर देखना जाए हम तो बहुत बड़ा है, तो उतने आधा पल्य, तो उस काल में वहां असंख्यात हो जाते हैं, ऐसे सर्वत्र समझना, क्योंकि भोग भूमि की भी आयु जो है 3 पल्ले की है, और वहां भी असंख्यात जीव हो जाते हैं, कुछ कभी आया, कोई अन्य बाद में आया, कोई फिर आया, ऐसे 3 पल्ले में कितने इकट्ठे हुए, तो असंख्यात हो गए। ऐसे देवों में तो सौधर्म से ऊपर तक कहीं भी हो सकता है उसका जन्म, तो क्षायिक सम्यक भी सभी असंख्यात हो गए। अभी आगे बढ़ेंगे
हाँ ना, हाँ नहीं तो यही रुकना पड़ेगा,
यही क्षायिक हो जाएगा,
सम्यक हाँ। हो जावे तो क्षायिक सम्यक, अच्छा हाँ ये बात हुई थी, आप नहीं थी, कोई बात नहीं। आपका प्रश्न ऐसा है, क्षायिक सम्यक तो किसी जीव के हो गया, तो उसके कितने भव अधिक से अधिक बाकी रह सकते हैं, अधिक से अधिक पूछना या मिनिमम? अच्छा मिनिमम, उसी भव में वह जीव मोक्ष जाएगा, मनुष्य उसी भव में मोक्ष जाएगा। एक, अगर वह जीव या तो नरक में जावे या तो देवगति में जावे, तो ये चालू भव पकड़ेंगे आप, तो वह चालू भव आगे का नरक का एक भव, नरक से डायरेक्ट मनुष्य में आएगा, तीसरे भव में वह मोक्ष चला जाएगा, यहाँ से देवगति में जाएगा 2 भव हो गए, वहां से मनुष्य में जाएगा 3 भव में। और कोई ऐसे जीव है कि जो यहाँ से तीरंच या मनुष्य में भोग भूमि के जीव होंगे, तो चालू भव भोग भूमि का भव, और वहां से भोग भूमि का कोई भी जीव मिथ्यात भी होवे सम्यक भी होवे, वहां से देव गति में ही देव भव में ही जाएगा, यानी स्वर्गों में जाएगा वो, तीसरा स्वर्ग से मनुष्य में आएगा, चौथा, तो चालू भव पकड़ेंगे तो 4 भव के अंदर, चालू भव नहीं पकड़ेंगे तो अधिक से अधिक तीसरे भव में तो वह जीव मोक्ष में जाएगा ही। चलो आगे चले, अबे अंतर स्वभावनु अवलंबन लेता मिथ्यात्वादी प्रकृति नो उपशम के क्षय थी जाए, अनादि मिथ्यादृष्टि जीव। हाँ जी,
देखो एक कर्मों का उपशम करना है कि क्षय करना है, कौन डिसाइड करता है? ये कर्मों में जो कोई अवस्था बनती है वो कर्म के अपने कारण होती है। जीव को ये नहीं करना अभी मुझे उपशम करना है या मुझे अभी क्षय करना है। तो ये जो कर्म की बात फिर क्यों पढ़नी है? तो उसका तो ज्ञान किया जाता है कि क्या क्या हो सकती है, परंतु उसको पढ़ के या उसको जान जान कर यहाँ कुछ करना है, हमको उपशम करना है, अभी मुझे क्षय करना है, मुझे जरा ऐसा अलग से कोई पुरुषार्थ करना है, ये कोई बात नहीं है। पुरुषार्थ तो एक ही है। क्या लिखा है? अंतर स्वभाव नु अवलंबन लेता। तो यथा योग्य कर्मों की अवस्था हो जाती है, किसी के उपशम होगी, किसी को क्षय होगी, वो क्या हो रहा है उस जीव के भी ज्ञान का विषय नहीं है। एक केवली गम्य बातें हैं, हम जो जानते हैं वो आगम से जानते हैं, अनुमान से जान सकते हैं। जैसे हम कहेंगे ना इस काल में किसी को क्षायिक नहीं है क्योंकि हमने आगम पढ़े हैं। तो ये जो बातें हमारा है ज्ञान का, क्योंकि ये हम पढ़ते हैं तो क्या हो रहा है और क्या क्या कहाँ कहाँ बातें हो सकती है ये बात हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसलिए कहा अंतर स्वभाव नो अवलंबन लेता मिथ्यात्वादी प्रकृतियों नो उपशम के क्षय थई जाए छे। वो सह कर्मों की अवस्था उसमें होती है, जीव की अपना पुरुषार्थ क्या है वो अपने अंतर स्वभाव का अवलंबन लेता है। आगे
अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ने पांच प्रकृतियों जो होई छे, ये कौन सी पांच होती है तेजल? अनादि मिथ्या दृष्टि को पांच प्रकृतियां होती है ऐसा लिखा ना, कौन सी होती है बोलो? मिथ्यात्व अनादि मिथ्या दृष्टि। हाँ बोल। हाँ तो कितने हो गए? छह हो गए। हाँ अभी लाइन पे आए। देखो जो सम्यक्त्व प्राप्त करता है उसके आगे के तीन भेद होंगे, हमने देखा था ना भाई। तो जिसके अभी सम्यक्त्व हुआ ही नहीं, जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उसके एक डायरेक्ट मिथ्यात्व ऐसा तगड़ा, बाद में एक तगड़ा, फिर और छोटा तगड़ा, और एकदम बिल्कुल दुबला, ऐसा तो तीन प्रकृतियां हो गई। तो यह कह रहे अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ने पांच प्रकृतियों जो होई छे, सम्यक मिथ्यात्व ने सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व ए बे प्रकृति तेने होती नथी, लख्या छे ने। प्रथम उपशम यानी प्रथमोपशम सम्यक दर्शन पामनार जीव ने पांच प्रकृतियों नोज उपशम थाय छे। आत्माना स्वभावनी दृष्टि थता उपशम के क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकटे छे। ने त्या
जो प्रथम उपशम है ना उसका अर्थ है पहली बार उपशम, क्योंकि प्रथम उपशम दूसरी बार भी हो सकता है ना। क्योंकि दूसरी बार उपशम होने वाले को किसी के पांच होगी और किसी को सात होगी, ख्याल में अति बात था। अब छह होती है कि नहीं उसकी बात मैं नहीं करूंगी। हाँ
चले।
हाँ
थैंक यू। अरे जो अभी ये हजम नहीं कर सकते उसके तुम पांच छह सात है वो हजम नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है देखो तेथी। अरे बेन तमे बात सांभळो, तमारी बात बराबर छे, पण जारे ए विषय होय त्यारे ए वात कराय। अत्यारे तो द्रव्यानियोगनो भाव छे, तो जेटली जरूर छे एटलू ज बोलवानुं ने, वधारी बोलवा जाय तो जे छे ते पण निकळी जाय माथामांथी। तमे कहो छ प्रकृति कोण उपशम करी शके? ना ना तमे बोलो तो खरा। हे તમે અંદાજ તો લગાવો, તમે ચાહો છો ને જાણવા માટે તો તમે વિચાર કરી શકો, આ લોકો વિચાર ન કરી શકે એટલે મેં તમને કહ્યું લે। હા અભી ઉસને એસા કહા પાંચ પ્રકૃતિ છ પ્રકૃતિ યા સાત પ્રકૃતિ કા ઉપશમ કરતા હૈ, તો પાંચ પ્રકૃતિ વાલા તો મિથ્યાત્વી અનાદિ મિથ્યાત્વી, સાત પ્રકૃતિ વાલા તો વો જો સાદી મિથ્યા દૃષ્ટિ હૈ, जिसके प्रकृति सत्ता में 28 प्रकृतियां हैं। अब छह वाले प्रकृति जो है, छह प्रकृति का उपशम करे ऐसा कौन जीव हो सकता है? ऐसा इनका सजेशन था कि छह वाले भी होते हैं, तो मैंने कहा अभी सात और पांच भी जो हजम नहीं कर रहे बराबर, क्योंकि अभी दर्शन मुनि के तीन भेद हैं, इनके नाम भी याद नहीं रहते हैं। तो आपको बिल्कुल जानना है तो आप चालू रखो, मैं भी आपको बताऊंगा। छह प्रकृति का उपशम करें है? इसमें क्या होता है, आज सुबह से देखो 6 बजे से लेकर 6:15 से अभी तो केवल 8 और 10-15 लाइन हुई है। इस हिसाब से जाएंगे तो हमको 300 पन्ने आगे जाना है। मैं ये नहीं चाहता कि हम जंप मारे, लेकिन जो चालू विषय है उसमें और आप कर्णानियोग के अंदर जाएंगे तो नहीं माथे पड़ेगा। 7:30 ना आगर तो मैं रोका हूँ, जो बताऊँ सो क्या कहते, देखो ये नया पैराग्राफ है ना, उसमें चौथी लाइन, आत्माना स्वभावनी दृष्टि तथा उपशम के क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकटे छे, त्या दर्शन मोहनी कर्मनी प्रकृति उपशम के क्षय तेना कारणे थई जाय छे। मुझे आपसे ये पूछना है कि आपको अगर चांस मिले तो आप दर्शन मोहनी कर्मों का क्षय करना चाहोगे या उपशम करना चाहोगे, क्या करोगे आप लोग? कौन बताना चाहता है? नहीं, आप क्या करोगे, उपशम करना चाहोगे? सात प्रकृति है ना जिसकी, देखो 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 ये नए नए बच्चे ऐसा बोलते हैं, हम कर्म में कुछ कर ही नहीं सकते हमारी ऐसी करतूत तो बुद्धि अटकी हुई है अभी उज्ज्वला ने यही बात बताई थी आपको, पर वो जो बात बताती ना ऐसे ठोक बजा के नहीं बताती, इसलिए दिमाग में नहीं घुसती कौन अच्छा अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो यहाँ कहने थई जाए छे करके 4-4 बार लिखा, हाँ पहले लाइन में था, देखो अंतर स्वभाव नु अवलंबन लेता मिथ्यात्मादी प्रकृति नो उपशम के क्षय थई जाए छे करी नथी सकता, ऐसा मैंने लिख के रखा। और अभी अभी यहाँ वही बात आई, तेना कारणे थई जाय छे, लख्यु ने बेन, क्षायिक सम्यक दर्शन पामवानी लायकात वाला जीव ने केवली के शुद्ध केवली नी निकटता माज क्षायिक सम्यक दर्शन थाय छे। जीवो आई निमित्त केवु होय तेनु ज्ञान करायु छे, केवली भगवान पासे तो लाखों समकी थी बैठा होय ते बधा काई क्षायिक सम्यक्त्वी नथी होता, जेनी लायकात होय तेने ज क्षायिक समकी थाय छे, ने तेने केवली अथवा श्रुत केवली निमित्त कहवाय छे। बीजा घना जीवो क्षयक्षम समकीती छे माटे केवली श्रुत केवली ना कारणे काई क्षायिक समकीत थतुं नथी, पण क्षायिक समकीत प्रकट करवानी लायकात वाळो जीव केवली श्रुत केवली निकटता माज तेनो प्रारंभ करे छे, कर्मभूमिना मनुष्यने ज तेनो प्रारंभ थाय छे। ये बात ख्याल में आ गई अभी? पछी तेनी पूर्णता स्वर्गादि चारे गतिमा थाय छे, यानी यहां से अगर कृतकृत्य वेदक अवस्था में, यानी कृतकृत्य क्षयक्षम सम्यक्त्वी अवस्था में अगर उस जीव के आयु मर्यादा पूरी हो गई, मतलब मरण हो गया, तो अगले चारों ही गति कहा है वहां जाकर वह
कृतकृत्य वेदक कह सकते, कृतकृत्य क्षयक्षमिक नहीं कर सकते।
बिल्कुल सही बात है, लेकिन वेदक और क्षयक्षम सम्यक्त्व एक ही सम्यक्त्व का नाम है, इतना तो समझे। फिर वेदक क्यों कहा जाता है, क्षयक्षम क्यों कहा जाता है, वो बात ध्यान में बाद में आ सकती है। आई एम जानमू के क्षायिक सम्यक्त्वनो प्रारंभ तो केवली श्रुत केवलीनी निकटता में कर्मभूमिना मनुष्य ने ज थाय छे तथा तेनी निष्ठापना निष्ठा लिखा ना, ये गुजराती में निष्ठा लिखते क्या?
नहीं, निष्ठा चाहिए,
यह है संस्कृत शब्द,
क्योंकि वो संस्कृत
ओरिजिनेटेड
है।
लख्यू छे ट, पण
ठ करो, ट का
ठोक बजा के ठ लिखना। बेन आमे गुजराती नहीं बोली सकता, पण शुद्ध लेखन बराबर केसु। कोई बात नहीं, हाँ, निष्ठापना पूर्णता अन्य गति मां चारे गति मां कोई एक मां पण थाई छे। हवे क्षोभम सम्यक्त्व केवी रीते थाय छे तेनी वात करे छे। चलो
देखो, क्षोभम सम्यक्त्व समझाने के लिए उपशम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व में बताया है कि सात प्रकृतियों का उपशम वाले को उपशम होता है और क्षय वाले को क्षय होता है। अब उन सात में से क्षोभम सम्यक्त्व दृष्टि को क्या है वो अभी बताएंगे, पहले गाथा पढ़ेंगे फिर उसकी चर्चा करेंगे। तो अगर क्षायोपशमिक सम्यक, वो क्षय वाला नहीं है, वो अलग ये तो क्षोभम सम्यक्त्व वाला क्षय वाला है। हाँ, तो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व केवी रीते थाय छे ते कहे छे। अनुदया षण्णां स्वजाति रूपेण उदयमानानां सम्यक्त्व कर्मोदये क्षायोपशमिकं भवेत् सम्यक्त्वम्। अनुदयात् षण्णां, षण्णां ने छों का अनुदय होने से, अनुदयात यानी अनुदय के कारण, अनुदय ने उदय नहीं होना, किस रूप से उदय नहीं होना, उदय तो होगा ही होगा। तो कहते स्वजाति रूपेण उदयमानान अनुदयात। देखो सात प्रकृति सत्ता में है तो उनका अपने रूप से उदय नहीं आना, अभी छह की बात चल रही ना, तो अनंतानुबंधी का अपने रूप से यानी अनंतानुबंधी रूप से उदय नहीं आना, मिथ्यात्व का मिथ्यात्व रूप से उदय नहीं आना, सम्यक मिथ्यात्व का सम्यक मिथ्यात्व रूप से उदय नहीं आना, इसको कहते हैं स्वजाति रूपेण अनुदयात। उदय रूप जो होने योग्य है, अभी उदयावली में तो है वहां पर, परंतु उदय उनका अपने रूप से नहीं है। देखो ऐसा नियम है, जो कोई कर्म सत्ता में पड़ा है वो उदय होकर ही खेरेगा, फल देकर ही जाएगा, या तो अपने रूप से फल देगा या पर रूप से होकर चला जाएगा, परंतु कोई उदय आए बिना फल दिए बिना निकल जाए ऐसे तीन काल में नहीं होगा। हम कहते हैं उसका तो बिना अनुभव के बिना इन्हें अभिपाक निर्जरा होती है, अपने रूप से वो उदय में नहीं आता। मिथ्यात्व अपने रूप से उदय में आ जाएगा तो जीव मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, सम्यक मिथ्यात्व अपने रूप से उदय में आए तो तीसरा गुणस्थान हो जाएगा, अनंतानुबंधी का उदय आ जाएगा या दूसरा या पहला जो यथायोग्य हो जाएगा। तो यहाँ बता रहे कि उन छह का उदय नहीं है। अभी छह कौन से बताओ, जिनका उदय नहीं, क्षोभम सम्यक्त्व की बात चल रही है, वो उपशम की नहीं चल रही है। हाँ यहाँ पर, हाँ अनंतानुबंधी चार, हाँ मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्या, बरोबर ख्याल में आया मौल तेजल? हाँ, इन छह का अपने रूप से उदय नहीं है। अब कौन सा बचा, सम्यक प्रकृति बचा, तो सम्यक प्रकृति रूप से उदय होगा किसका, छह के छह का नहीं। देखो देखो, अपने स्वजाति में उसका उदय होगा, दर्शन मोहिनी का दर्शन मोहिनी रूप से, मिथ्यात्व का सम्यक्त रूप से, सम्यक मिथ्यात्व का भी सम्यक्त रूप से, और अनंतानुबंधी का, हाँ अन्य जो उसके उसके चारित्र मोहिनी की जाति से होगा, वो प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान जो उदय रूप जो है ना, अन्य प्रकृतियां उदय रूप है उस रूप से उसका उदय होगा। इसको क्या कहेंगे, क्षयोपशम सम्यक्त्व। क्षयोपशम दो बात है ना, क्षय यानी उदय तो हो रहा है परंतु कैसे, स्वरूप से उदय नहीं हो रहा है, पर रूप से उदय हो रहा है। तो अपने रूप से उदय न होना इसको कहेंगे अनुदय, उसको कहेंगे उपशम, उसका उदयाभावी क्षय। हाँ, तीनों में वैसे तो नौ कषाय में भी होता है, परंतु अभी हम यहाँ अन्य कषाय में इतना ही ले लेते स्थूल रूप से। तो ये अनंतानुबंधी चारित्र मोहनी रूप से होती है, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप से होती है, सम्यक प्रकृति का उदय चलता है। इन छह का अनुदय है, अभी आगे की लाइन पढ़ेंगे ना, सम्यक्त्व कर्मोदय, और किस कर्म का उदय है, सम्यक प्रकृति का उदय है। और इन छह का अपने रूप से उदय नहीं है, इतनी बात की, किस रूप से उदय हो रहे वो बात उन्होंने नहीं बताई। ये दर्शन मोहिनी की सम्यक प्रकृति उदय रूप है, और चारित्र मोहिनी की अन्य जो यथा योग्य, कोई चौथे वाला है तो तीन कषाय का उदय है, कषाय चौकड़ी का, पांचवे वाला है तो दो कषाय चौकड़ी का है, और उपशम सम्यक्त के क्षय उपशम सम्यक्त के साथ छठे सातवें में है, हाँ तो एक संज्वलन का उदय है, तो उसकी बात उन्होंने यहाँ नहीं की है। तो यहाँ सम्यक प्रकृति का उदय है, ऐसा होने पर क्षायोपशमिकम भवे सम्यक्त्वम, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता है। तो क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में सात प्रकृतियों में से आपको बताना है किसका किसका अनुदय है और किसका उदय है। बोलो तेज, हाँ सम्यक प्रकृति का उदय है, और ना उनको बोलने दो, हाँ हाँ मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व का अनुदय है और अनुदय, बहुत अच्छा। नहीं नहीं वो किसका उदय हमने उसने पूछा, वो तो है जो यथा योग्य होगा। हाँ सात में से हमको लेना है, सात में से छह का अनुदय है और एक सम्यक प्रकृति का उदय है। तो अनुदय कहने के लिए वहां स्वजाति रूप से अनुदय है ऐसा कहना है, क्योंकि जो स्थिति पूरी हुई है तो अभी तो परमाणु तो रहेगी नहीं ज्यादा काल, उनका तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ है, अन्य रूप से उदय होगा। अब वो किस रूप से उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो छह का अनुदय है, एक का उदय है, उसको कहेंगे क्षायोपशमिक सम्यक्त्व। वो उदय है ना सम्यक प्रकृति का, इसीलिए उसी को वेदक भी कहते हैं। जिसका उदय होता है उसका वेदक कहलाता है, जैसे क्रोध का जिसको उदय है तो उसको हम क्रोध वेदक जीव कहेंगे। ये टर्मिनोलॉजी सामान्य से कहीं भी, तो इसलिए इसी सम्यक्त को वेदक सम्यक्त भी कहते हैं। इतनी बात यहाँ पर हम ख्याल में लें, दोनों नाम आते हैं तो कंफ्यूजन नहीं लगे, चौथा कौन सा वेदक सम्यक्त है। दो तो हमने लिए क्षायोपशमिक क्षायिक और क्षायोपशमिक, तो ये वेदक कहाँ बिठाना, तो क्षायोपशमिक का ही दूसरा नाम है वेदक सम्यक्त। अभी यहाँ का अर्थ देखते हैं, पूर्वोक्त सात प्रकृतियों माती, पूर्वोक्त क्यों कहा, पहली गाथा में ये बात हो चुकी है, उनके नाम भी देखे हैं। छह प्रकृतियों नो उदय न होए तथा सजातीय एटले समान जातीय रूप प्रकृति उदय रूप होए, यानी अपने स्वजातीय अन्य रूप से उदय में आकर ये खिर जाए खिर रही है, तथा सम्यक कर्म प्रकृति नो उदय थता क्षायोपशमिक सम्यक तो थाय छे, छह का अनुदय है, अन्य अपने स्वजाति रूप से उसका उदय चल रहा है, और यहाँ दर्शन मोहिनी में से सम्यक प्रकृति का उदय हो रहा है। भावार्थ, मिथ्यात्व ने सम्यक मिथ्यात्व ना उदय नो अभाव होए, सम्यक वो म और य इकट्ठा करना,
म आधा करो,
हाँ
म ने खोड़ो करी ना को,
सम्यक प्रकृति नो उदय होए, अभी देखा ना हमने अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ ना उदय नो अभाव होए, उदय के अभाव को या अनुदय कहा, तथा विसंयोजन करी, ये विसंयोजन का अर्थ हम कल देखेंगे, अभी तो पढ़ते हैं, शॉर्ट में इतना ही लेके वो अन्य प्रकृति रूप कर देना, विसंयोजन करी अप्रत्याख्याना वर्णादि रूप थी उदयमान होए, ते वेला क्षोभशम सम्यक्त्व उपजे छे। आ त्रणे सम्यक्त्वनी उत्पत्तिनु विशेष कथन श्री गोमट सार, લબ્ધી સારથી જાણવું.
સવારે આવીને સાંભળવું લખે હા. જાવાની કે જ્ઞાન તૈ સુજે લો કાલો સોવાણી મસ્ત કર્ણમો તદાદિત હો. નલિનભાઈ.